नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में भारत के लिए गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष रहा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कल डॉ कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने चिल्ड्रन पार्क में पहली ट्यूलिप की कलियां लगाकर सालाना ट्यूलिप पौधारोपण अभियान शुरू किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक संपत्ति धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 7 अवैध नाइजीरियाई नागरिक भी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया।
आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के लिए भी वर्ष 2025 स्मरणीय रहा। श्री मोदी ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों की भी प्रशंसा की।
हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया, भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की।
विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी।
प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा चरण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा नेता संवाद में वे स्वयं भी भाग लेंगे।
भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को विश्व का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि आत्मचिंतन, प्रेरणा और नवचेतना का अनुपम स्रोत है।
जी का ये जो मन की बात का कार्यक्रम है, मुझे लगता है ये विश्व का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कार्यक्रम है। हर बार कुछ नई चीज सीखने को मिलती है और आज भी उन्होंने जैसे 2025 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, राम मंदिर पे जो हमारा ध्वज फहराया गया उसका जिक्र किया, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम हमारी आज की पीढ़ी को भी और सभी परिवारों को साथ बैठ के सुनना चाहिए। इतनी ऊर्जा है उस कार्यक्रम में कि हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। और साथ साथ उन्होंने आने वाली विवेकानंद जयंती के कार्यक्रम के बारे में बताया 12 जनवरी को और नववर्ष की शुभकामनाएं भी।
इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा और 8 जनवरी तक चलेगा। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सत्र के दौरान रचनात्मक सहभागिता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि विधायी समीक्षा और सार्थक बहस लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने के मूल आधार हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र के उद्घाटन दिवस पर कार्यवाही प्रातःकाल प्रारंभ होगी, जबकि शेष दिनों में बैठकें दोपहर 2 बजे शुरू होंगी। विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र के दौरान विकास कार्यों की प्रगति, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय अनुशासन जैसे विषयों के केंद्र में रहने की संभावना है। नई दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में कल डॉ. कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। आत्मबोध से विश्वबोध शीर्षक इस व्याख्यान को गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. भाग्येश झा देंगे। इस दौरान अभिव्यक्ति एक दूरदर्शी के संग्रह से करघे की अभिव्यक्तियां शीर्षक एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा, जो कला केंद्र के दर्श नाम 1 और 2 गैलरी में प्रदर्शित होगी। ये प्रदर्शनी 7 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के शताब्दी वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये औद्योगिक क्षेत्र रोजगार सृजन, नवाचार और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधारशिला बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघर्ष, परिश्रम और उद्यमशीलता की 100 वर्षों की इस यात्रा ने राजधानी की औद्योगिक विरासत को एक विशिष्ट और सम्मानित पहचान दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर व्यापार को अधिक सुगम तथा सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रभावी, व्यवहारिक और उद्योग हितैषी निर्णय ले रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में अटल सम्मान समारोह के आयोजन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, लोकतंत्र की मजबूती और सुशासन तथा भारत के वैश्विक सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में श्री वाजपेयी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
देखिए, अटल सम्मान समारोह वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर जो गुड गवर्नेंस डे मनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया, इसलिए दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में हजारों के संख्या में RWA, छठ पूजा समिति, मंदिर कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी और यहां क्षेत्र की जनता ने भारत रत्न अटल जी को सम्मान देने के लिए यहां आकर हमारे साथ मनाया है और हम सब अटल जी से प्रेरणा लेकर गुड गवर्नेंस से जनकपुरी को भी आगे ले जाने का काम करें।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री सचदेवा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के अप्रतिम नेतृत्व, अलौकिक वाणी और दूरदर्शी दृष्टि ने न केवल राष्ट्र के सपनों को आकार दिया, बल्कि देशवासियों के हृदय में आशा और प्रेरणा का अविस्मरणीय दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का युग और उनका व्यक्तित्व आज भी नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से मार्गदर्शन प्रदान करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्री जेटली एक समर्थ राजनेता होने के साथ साथ अत्यंत संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति के धनी थे। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री ने अपनी तार्किक क्षमता, संतुलित दृष्टिकोण और मृदुभाषी स्वभाव की सार्वजनिक जीवन में शुचिता, गरिमा और मर्यादा के जो उच्च मानक स्थापित किए थे, वे अविस्मरणीय है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज एक संपत्ति धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति के फर्जीवाड़े में शामिल थे, जिसमें उन्होंने फर्जी बैंक दस्तावेज और धोखाधड़ी वाले धन का उपयोग किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार बरामद की है। मामले में जांच अभी जारी है। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने आज उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 7 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी बिना मान्य वीजा के देश में अधिक समय से रह रहे थे। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों को विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह चहल ने राजधानी के चिल्ड्रन पार्क में पहली ट्यूलिप की कलियां लगाकर निगम के सालाना ट्यूलिप पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। श्री चहल ने बताया कि NDMC ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शहर को नागरिकों के लिए अधिक सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। नगर पालिका के अनुसार इस वर्ष कुल 5,17,500 ट्यूलिप की कलियां खरीदे गए हैं, जिनमें से 3,25,000 कलियां NDMC क्षेत्र के लिए और 1,92,500 कलियां DDA के लिए हैं। इसके अतिरिक्त श्री चहल ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत NDMC क्षेत्र में आज एक पौधा लगाया।
विश्व के सबसे लोकप्रिय देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम के हम अंतर्गत जो वृक्ष लगा रहे हैं, उस वृक्ष में RW के लोग सरोजनी विहार क्षेत्र में NDMC के लगा रहे हैं, पेड़ पोल्यूशन को खत्म करता है, एक आह्वान हमारा आज आंदोलन बन गया। और हम प्रत्येक रविवार को NDMC वृक्ष लगाएगी, सैम्पलिंग लगाएंगे, जिनको मेंटेन करने का, संभाल करने का एक संकल्प के साथ कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राजधानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार AI आधारित डेटा ड्रिवन प्रणाली पर IIT कानपुर के साथ सहयोग की संभावना तलाश रही है। श्री सिरसा ने बताया कि प्रस्तावित सहयोग का उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों की सूक्ष्म स्तर पर पहचान, उनके प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन करना है। राजधानी में आज सुबह सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई, वहीं दिन में धूप खिली थी। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 397 दर्ज किया गया, जो वायु की बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में भारत के लिए गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष रहा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कल डॉ कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने चिल्ड्रन पार्क में पहली ट्यूलिप की कलियां लगाकर सालाना ट्यूलिप पौधारोपण अभियान शुरू किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक संपत्ति धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 अवैध नाइजीरियाई नागरिक भी गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।